یہ ایس بی ایس اردو ہے۔
السلام علیکم ڈاکٹر تابندہ، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت قیمتی وقت دیا اپنا۔
وعلیکم السلام عائشہ، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می، یہ بہت مجھے آپ نے اپرچونیٹی دی ہے کہ میں اس فورم پہ بات کر سکوں، اور جو لوگ اردو سمجھتے ہیں اور جن کے لیے یہ آپ پروگرام کر رہی ہیں، میرا خیال ہے آپ نے بہت اچھا ٹاپک چوز کیا آج کا جو آپ ابھی بتائیں گی سب کو۔
بہت شکریہ، میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے، ایک ہماری جو کمیونٹی ہے پاکستان میں، اور ایک عورت ہونے کے ناطے بھی ایک بہت اہم ہے کہ ہمیں اپنے ہی جسم اور اپنی ہی جو سچویشنس ہیں اس کا معلوم ہو۔ تو میں اپنے سننے والوں کو، سب سے پہلے سامعین کے لیے یہ سوال آپ سے پوچھوں گی کہ سب سے پہلے آپ ان کو یہ بتائیے کہ پیپ اسمیئر اور سروائیکل اسکریننگ میں فرق کیا ہے ان دونوں ٹیسٹ میں؟
ٹھیک ہے، یہ سب سے اچھا اور بیسک سوال ہے اس وقت، جو کہ بہت سے لوگ جو ہیں کنفیوژن کا شکار ہیں۔ دیکھیں، یہ جو 1 دسمبر 2018 سے پہلے ہم جو ٹرمینالوجی یوز کر رہے تھے مریض کو بتانے کے لیے سروائیکل اسکریننگ کے لیے، وہ ہم یوز کر رہے تھے پیپ اسمیئر، اور ہم اس کو اسمیئر اس لیے کہتے تھے کیونکہ ہم وہ سلائڈس پہ ایک اسمیئر بناتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ، اور جو پیپ کا لفظ ہے وہ پیپلوما سے آیا ایکچولی، جو کہ ایچ پی وی میں ہوتا ہے، مطلب کہ ایچ پی وی۔ سو دا ٹرمینالوجی جو پہلے ہم یوز کر رہے تھے، ایک ہم وہاں سے برش سے لیتے تھے، کلیکشن کرتے تھے، جو یوٹرس کا ماؤتھ ہوتا ہے، ہم اسے ماؤتھ آف ووب کہہ لیں، تو وہاں سے ہم اس برش کے تھرو جو اسپیسیمن لیتے تھے، اور ہم اس کے بعد اس کو ایسے سلائڈ پہ اسپریڈ کر کے اور اس کو فریز کر دیتے تھے، اور اس کو اسپیشل ایک ہم اسپرے کرتے تھے، اور وہ ہم لیب بھیج دیتے تھے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ وہ لیب میں جاتا تھا تو لیب اس میں دیکھتی تھی کہ کوئی اب نارمل سیل تو نہیں ہے۔ اب نارمل سیل جو ہے وہ ہمارے سروکس کے جو سیل ہوتے ہیں نارمل، ان میں جب ایچ پی وی انفیکشن کی وجہ سے جو چینجز آتے ہیں وہ اب نارمل ہو جاتے ہیں، اور وہ اب نارمل سیلز جو تھے وہ لیب انڈر دا سلائڈ میں جب وہ دیکھتی تھی تو وہ ہمیں اس کے حساب سے ہمیں بتاتے تھے کہ یہ ایک اس میں لو گریڈ پرابلم ہے یا ہائی گریڈ پرابلم ہے۔ پھر اس کے آگے سے بھی تین حصے ہوتے تھے، تو یہ پورا ایک آپ سمجھیں کہ ایک الگوریتھم تھا جس کے اوپر ہم اس کو فالو کرتے تھے، اور اس میں پیشنٹس مختلف جگہوں پہ فال کرتے ہیں، اور کوئی کسی کو 6 مہینے بعد ڈاکٹر بلاتی تھی، کبھی کسی کو 12 مہینے بعد بلاتی تھی، کبھی کسی کو کہتی تھی آپ کا ٹیسٹ نیگیٹو ہے، اب آپ 2 سال بعد آئیے گا۔ پھر ابھی یہ چینجز اس طرح ہوئیں کہ جو یہاں پہ جو سروائیکل، یہ ایویڈنس بیس جو اسٹڈیز تھیں اور جو اس کے اوپر انہوں نے کافی ریسرچ کی، کہ کیونکہ اسکریننگ جو ہوتی ہے وہ ایکچولی ہوتی ہے سیکنڈری پریونشن ہوتی ہے، بہت ارلی اسٹیجز پہ ڈیزیز کو آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی، کیونکہ اس کا علاج ممکن ہوتا ہے بہت ارلی اسٹیجز میں، اور یو کین گیٹ ریڈ آف دیٹ کینسر۔ اور سروائیکل کینسر بھی انہیں میں سے ایسا ایک کینسر ہے جس کا کہ ہم بہت ارلی اسٹیجز پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو ہم اس کی کمپلیٹ جو ہے وہ ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں، قسم کے ان سیلز کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو نیا ٹیسٹ انہوں نے 1 دسمبر سے جب نکالا ہے، تو ہم نے ٹرمینالوجی اس لیے ختم کر دی پیپ اسمیئر کی، کیونکہ ہم اسمیئر نہیں بنا رہے۔ اب ہم یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں اسی طریقے سے کرتے ہیں، ویمن کو جو ٹیسٹ ہم پیپ اسمیئر جس طرح سپیکولم ڈلتا تھا، جس طرح برش سے ہم سیمپل لیتے تھے، لیکن جو سیمپل ہوتا تھا وہ ہم سلائڈ بنانے کے بجائے اب ایک سولوشن ہوتا ہے جس میں ہم اس کے وہ اس میں وہ برش جو ہے ایسے کر کے یا آپ اس میں توڑ کے بھیج سکتے ہیں، بس اس میں مکس کر دیتے ہیں۔ سو جو سارے سیل جو ہم نے وہاں سے اٹھائے ماؤتھ آف ووم سے، وہ سب سیل جو ہیں وہ سولوشن کے اندر چلے گئے۔
صحیح،
اب وہ جو سیلس ہیں وہ لیب میں جائے گا ٹیسٹ، اور انہوں نے اس کو سب سے پہلے اس پہ جو ایچ پی وی وائرس ہوتا ہے، ابھی میں آپ کو اس کے بارے میں مزید بتاؤں گی، لیکن ایچ پی وی ٹیسٹنگ ہوگی اس کے اوپر، اور ایچ پی وی 16 اور 18 جو ہے وہ ان کا نمبر ہے جو کہ سب سے زیادہ ریسپانسیبل ہیں سروائیکل کینسر کے لیے،
مطلب ہائی رسک سٹرینز جو ہیں۔
ہاں جی، تو یہ دو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن یہ 2 80% میں یہ ہوں گے وائرس، تو یہ وائرس وہ ٹیسٹ کریں گے اس سولوشن کے اوپر، اور اگر کسی اے بی سی ڈی جو بھی پیشنٹ ہے اس کا سمجھیں آپ کے نیگیٹو آیا وہ ایچ پی وی اس میں، تو وہ اس کے بعد اس کو مزید ٹیسٹ نہیں کچھ بھی کریں گے۔ اگر وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ پازیٹیو آ گئے، دونوں میں سے کچھ بھی پازیٹیو ہے، پھر وہ اس اسپیسیمن کو مزید ٹیسٹ کریں گے کہ اس میں کس قسم کے سیل ہیں اور ان کی اب نارملٹی کی کیا کیا سچویشن ہے۔ تو یہ اب ہم اس کو کہتے ہیں تھن پریپ۔ थिन प्रेप इसका नाम आ गया, या इसको हम अब कहते हैं सी एस टी इन अ शॉर्ट वर्ड्स, इट्स अ सी एस टी सर्वाइकल स्क्रीनिंग टेस्ट. तो वो जो से एक किस्म का समझे कि ये सेम चीज है लेकिन इट्स अ बिट मोर एक्सटेंसिव.
अच्छा, ये जो एचपीवी है, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, जिस तरह आपने कहा कि इसकी काफी स्ट्रेन्स हैं जिसमें से कुछ ही हैं दो या तीन जो सर्वाइकल कैंसर की वजह बन सकती हैं, तो ये
मेजर
वजह बन सकती हैं. तो जो अगर कोई पेशेंट आपके पास हैं और वो पॉजिटिव आ गए हैं कोई भी स्ट्रेन, खासतौर पे ये जो हाई रिस्क स्ट्रेन है, तो क्या ये कितने, क्योंकि वायरस है तो वायरसेस तो आते हैं और इंसान की बॉडी जो है ना वो खुद उसकी इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है और उसको खुद जिस्म से खारिज कर देता है, ख़त्म कर देता है. तो एचपीवी का क्या चांसेस हैं कि वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाए या खुद ख़त्म होता है या नहीं?
ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया आयशा, क्योंकि एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है इसकी बहुत सारे स्ट्रेन हैं और ये एक हर सेक्चुअली एक्टिव बंदा इनको एक्सपोज होता रहता है, ठीक है. और ये वायरस आपकी इम्यून बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली विद इन 12 मंथ उससे गेट रिड भी करता रहता है, जैसे उससे वो खत्म कर देता है, उसके अगेंस्ट फाइट करता है और वो उसको खत्म करता रहता है, ठीक है. अच्छा, अभी ये जो अभी हम आगे बात करेंगे स्क्रीनिंग के, जो हमें वैक्सीनेशन अवेलेबल है उसके बारे में भी, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो 16 और 18 है ये तो मेजर कॉज उन्होंने फाइंड आउट किया कि बहुत 80% जो कैंसर होते हैं उनमें यही वजह होती है. तो इनके लिए फिर उन्होंने वैक्सीन बनानी शुरू कर दी. लेकिन आप ये याद रखें कि थोड़े से और ऐसे स्ट्रेन हैं जो जिनके के बारे में वैक्सीन नहीं होगी और जो कि स्टिल जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है. तो लेकिन क्योंकि एचपीवी जब बंदे को जो भी फीमेल या मेल जब सेक्चुअली एक्टिव होते हैं तो उन वो एक दूसरे से स्किन टू स्किन जेनिटल स्किन जो है वो एक दूसरे से कैच कर सकती है, ठीक है. सो लेकिन इसमें एचपीवी पॉजिटिव होने का ये मतलब नहीं है कि कोई डायलेमा है या समबडी आपके ऊपर कोई चीट कर रहा है या कोई आपके क्योंकि आप दोनों ये वायरस कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी को नहीं पता चल सकता कि ये किसने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है. तो ये चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में कि ये इट्स नॉट लाइक एसटीडी. ये अगर आप इसको समझें कि जी मेरे से ये चीटिंग कोई कर ली मेरे हस्बैंड ने या जैसे, और यही वजह है कि मेरा ख्याल है कि बहुत सी आप देखें कि मैंने नोट किया है कि जो इंडो पाक या कल्चर की जो लेडीज हैं वो समझती हैं कि हमें शायद ये नहीं होगा क्योंकि हम तो एक ही पार्टनर के साथ हैं. ये हर सेक्चुअली एक्टिव औरत को या आदमी को एचपीवी वायरस की इन्फेक्शन हो सकती है.
सही, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो एक ख्याल एक मिथ बना हुआ है कि ये तो सिर्फ उन्हीं ख़वातीन को होने के चांसेस हैं जो एक से ज़्यादा पार्टनर्स रह चुके हैं ज़िंदगी में कभी, तो इसका मतलब है कि आप कह रही जैसा स्किन टू स्किन जेनेटल कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है.
सही, देखिए इसमें ये है कि वो जो हैं जिनके मोर देन वन सेक्चुअल पार्टनर होते हैं या बहुत अर्ली स्टेज पे सेक्चुअली एक्टिव जो लेडीज होती हैं उनके लिए चांसेस ये है कि उनका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, ठीक है ना. हम उसको रिस्क फैक्टर को बढ़ जाता है लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो औरतें और लड़कियां जो हैं वो एक ही पार्टनर है और उनकी लेटर लाइफ में उनका रिस्क फैक्टर कम है, इसलिए हम कम देखेंगे उनमें सर्वाइकल कैंसर,
लेकिन जीरो नहीं है.
जीरो नहीं है.
सही, आपने कहा कि आपने वैक्सीनेशन की बात की तो ऑस्ट्रेलिया में भी 12 साल की उम्र के बाद बच्चों को ये दिया जाता है, या आप जरा मुझे बताइए या देने का इरादा रखते हैं ये. दूसरी आप मुझे एक ये जरूर बात बताइएगा कि अगर तो एक पेशेंट है और वो एचपीवी पॉजिटिव आ गए हैं कोई भी स्ट्रेन, खास तौर पे 16 या 18 की अगर हम बात करें, तो क्या उसके बाद वो वैक्सीनेशन ले सकते हैं या नहीं?
जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताती हूँ इसके बारे में. सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जो नई अब गाइडलाइन शुरू की है, इससे पहले हमारा जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था उसके हिसाब से हम कर रहे थे कि जो लड़कियां 18 साल की हो जाती है या उनको सेक्सुअली एक्टिव हुए हुए 2 साल हो जाते हैं, तो जो भी बाद में आता है वो उसके अकॉर्डिंगली वो अपना पहला टेस्ट शुरू करा देती हैं पैप्समेयर का, और 69 इयर्स की एज तक हर 2 साल बाद वो स्क्रीन कराती रहती हैं. लेकिन अभी ये जो न्यू आया है जो मैं बता रही हूँ कि एविडेंस बेस्ड और बहुत सारी स्टडीज के बाद उन्होंने ये देखा कि ये स्क्रीनिंग हमें 25 से शुरू करनी चाहिए, 25 साल पे शुरू करनी है। और उसकी एक वजह ये भी है कि ये HPV की प्रोटेक्शन आ गई, उसकी वैक्सीनेशन आ गई, सर्वाइकल कैंसर जो है वो बहुत कम अब हम देखेंगे इंशाल्लाह आगे से। और स्पेशली क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो उनको वैक्सीनेशन मिल रही है स्कूल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। तो सबसे पहले सब लोग ये सुने कि 25 साल से लेके 74 साल तक अब हम ये करेंगे, और इसकी जो स्क्रीनिंग का टाइम उन्होंने अब रखा है वो 5 साल होगा। अब जब हम ये 5 साल कहते हैं स्क्रीनिंग के लिए, तो आयशा याद रखें कि ये इसका ये मतलब नहीं होता कि कुछ भी टेस्ट रिजल्ट आ जाए और आप 5 साल बाद ही कराएंगे। ये 5 साल जो होते हैं वो सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जिनका कि टेस्ट नेगेटिव आता है और जिनको हम लो रिस्क पे रख देते हैं। फिर हम उसको एक टिक कर देते हैं जब हम उनकी GPs आपकी जब ये करेंगे सर्वाइकल स्क्रीनिंग, तो वो टेस्ट उनका जो है वो टिक हो जाता है और वो रजिस्टर से भी उनको एक लेटर जाएगा और क्लिनिक से भी फिर उनको लेटर जाएगा 5 साल बाद। लेकिन इन 5 सालों में सपोजिडली आप देखें कि किसी लड़की को सेक्स के बाद उसको ब्लड आ गया, उसे हम कहते हैं पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसके बारे में जाके अपने GP से बात करें फौरी तौर पे, क्योंकि वो एबनॉर्मल हो जाएगा। तो कोई भी एबनॉर्मल फाइंडिंग या किसी एबनॉर्मल डिस्चार्ज, आपको कोई ऐसा हो रहा है जिसका कि आपको समझ नहीं आ रहा, आपको अपनी स्क्रीनिंग के इंतजार में नहीं बैठना, बल्कि आपने जाके अपने डॉक्टर को बताना है कि मुझे ये एबनॉर्मल कुछ हो रहा है। तो ताकि इन बिटवीन भी अगर आपको कोई उनको फिर कोई एक्स्ट्रा टेस्ट करना पड़े तो वो कर लें। अभी आपने इसमें एक सिंपल सी अब चीज ये है कि अब लोगों के दिलों में दिमाग में ये समझ नहीं आ रही कि जी हम 25 साल से पहले हमारा तो हो गया था टेस्ट, हमें तो पता नहीं था, अब हम क्या करें। ठीक है, अब आप इसके लिए सिंपल चीज ये है, अगर आप 25 से नीचे हैं, आपने इससे पहले पैप स्मेयर कराई हुई है, सपोजली एक बच्ची है उसकी शादी हो जाती है 21 साल में, उस एक्चुअली एक्टिव है, 23 साल की उम्र में उसने अपनी पहली पैप स्मेयर करा ली है, ठीक है कोई बात नहीं। अब आपने क्या करना है, क्योंकि अब इस प्लान और नए प्रोग्राम में आपने क्या करना है, अगर तो आप 23 से पहले छोटे हैं और आपने कराई थी पैप, तो अब उसके बाद आपका रिजल्ट भी नॉर्मल था और नेगेटिव था, तो आप 25 का इंतजार करें और फिर आप अपना नेक्स्ट CST कराएं जो अब हमारा नया टेस्ट।
सही, मतलब हर सूरत में 5 साल का इंतजार ना करें।
नहीं,
ठीक है, ठीक है। एक आपसे मैं सवाल पूछूंगी कि जो HPV पॉजिटिव आ जाते हैं उनके लिए आप कह रही हैं कि हर दो उसके बाद 2 साल बाद उनको वापस फॉलो अप कराना पड़ता है?
नहीं, वो उसमें भी हम एक दूसरा हम उसमें एल्गोरिथम उसमें फॉलो करते हैं इस तरह कि जब HPV जो है वो हम जैसे कि मैं कह रही हूँ कि इसकी बहुत सारी किस्में हैं और बहुत आम चीज है कि आप HPV जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लोग जो सेक्चुअली एक्टिव होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, उनका बॉडी इम्यून सिस्टम उससे गेट रीड करता रहता है। अब ये है कि ये जो इन्होंने जो दो गार्डासिल हम यूज कर रहे थे इससे पहले, और गार्डासिल और सर्वरिक्स, ये दो वैक्सीन थी जो कि हम यूज कर रहे थे जो 16-18 के खिलाफ HPV के खिलाफ जो है आपको इम्यूनिटी दे देती थी। अभी इस साल 2018 में गार्डासिल ने एक और नई वैक्सीन बनाई है जो कि गार्डासिल 9 उसका नाम है। तो गार्डासिल 9 जो है वो प्रोटेक्ट करती है 9 HPV के लिए, उनमें से जो 7 HPV वायरस हैं वो हाईली रिस्पॉन्सिबल हैं सर्वाइकल कैंसर के, तो उनकी प्रोटेक्शन दे देती है। 2 इनमें से ऐसे हैं जो कि जेनिटल वॉर्ट्स की प्रोटेक्शन के लिए हैं, ठीक है। तो जो गार्डासिल 9 जो अब आ गई है, ये अब स्कूलों में भी यही मिलेगी बच्चों को, और ये 12 से 13 साल के जो बच्चे हैं उनके स्कूल प्रोग्राम के हिसाब से उनको 2 डोजेज मिलती हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट की तरफ से ये फ्री है। अब उसके बाद दूसरा बात आपकी आएगी कि ये कौन करवाए और कौन ना करवाए बच्चे, तो मैं आप सबको कहूंगी अपने बच्चों को जब उनके घर में फॉर्म्स आते हैं माँ उन्हें उनको साइन करना होता है, प्लीज अपनी बच्चियों को, बच्चों की बेटों बेटियों दोनों
के लिए
जी स्कूल की जो वैक्सीनेशन है उसको मिस मत करें। और अगर किसी ने मिस कर दी है, ठीक है, अगर किसी ने मिस कर दिया स्कूल में सम हाउ उस दिन आपकी इम्यूनाइजेशन वहां पे हो रही थी और आप नहीं जा सके, तो कैचअप इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ये नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर। हर सर्जरी जो जनरल प्रैक्टिस की सर्जरी होगी जो आपका GP होगा उसके पास एक्सेस है कि वो आपको आपकी कैचअप वैक्सीन जो है वो 19 साल की अगर आपकी उम्र है या उससे कम है और आपने नहीं करवाई थी स्कूल के वाले में, तो आप स्टिल अपने जो वो 2 फ्री वैक्सीन हैं वो आप करवा सकते हैं। लेकिन ये 15 साल के बाद जब होती है तो हाईली रिकमेंडेड है कि आप 3 डोजेज में इंस्टेड ऑफ टू. तो दो आपको गवर्नमेंट की फ्री कैचअप में मिल जाएंगी, लेकिन एक आपके पॉकेट पे होगी जो कि हाईली रिकमेंडेड है. अगर आप वो करवा लें तो बहुत अच्छा है. तो वो तीसरा जो होगा वो आपको पे करना पड़ता है. और गार्डासिल 9 की जो मैंने आज सुबह चेक की है प्राइस $175.
सही. और आपने ये तो आपने बताया बच्चों की जो वैक्सीनेशन है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत, जो HPV पॉजिटिव हैं एडल्ट्स, जो अभी समझें कि आजकल में हैं और 25 साल से उनकी उम्र बड़ी है और HPV पॉजिटिव आ गए हैं, चाहे वो हाई रिस्क स्ट्रेन है या लो रिस्क, उन वो फिर वैक्सीन ले सकते हैं या बस वो इंतज़ार करें इम्यूनिटी अपनी को, ताकि वो खुद ही उस पर अटैक करके उसको ख़त्म करें जिस्म से?
इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्शन होती है वो सेक्चुअली एक्टिव होने से पहले, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको 12 से 13 साल की उम्र में शुरू किया है, ताकि बच्चियां अभी सेक्चुअली एक्टिव नहीं होते सो वो उनको मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलती है. अब जो लोग आप समझें कि कुछ भी एज है, 20 के बाद है या इवन 18 के बाद है और वो ऑलरेडी सेक्चुअली एक्टिव हैं, उन्होंने वैक्सीन नहीं ली हुई, अब वो क्या करें? उसके लिए आशा ये है कि क्योंकि आपके ऑलरेडी एक्सपोजर कुछ HPV से हो चुका हुआ है, तो सपोजेडली आप उसको कोई भी नाम दे दें, HPV A है, B है, C है, या आपको तीन हो गए हुए हैं, लेकिन आपको अभी भी 16 या 18 नहीं है, आपका CST भी टेस्ट हुआ है और उसमें आप नेगेटिव आए हैं, तो देखें आपके लिए अभी भी प्रोटेक्शन लेने के लिए आप अपने दो जो इंजेक्शन आप लगवा सकते हैं 1 month apart. इसका मतलब है कि यू विल स्टिल गेट द, अभी भी आप उसके बारे में जो प्रोटेक्शन है वो ले सकते हैं अपनी.
मतलब इसका कोई मनफी असरात नहीं होंगे जिस्म पे? बिल्कुल. HPV के कुछ अलामत हैं, मतलब मर्द या खवातीन, अगर कोई ऐसे अलामत हैं जिनसे उनको लगे कि, एक तो आपने बताया कि अगर कोई एबनॉर्मल कोई भी रिएक्शन है बॉडी में, ब्लीडिंग है या कोई भी, तो वो तो जा सकते हैं. कोई ऐसे है कि मतलब ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही, लेकिन
ऐसा ये जो पोस्टकोइटल ब्लीड मैंने आपको बताया ये इस वजह से हो सकती है क्योंकि जो चेंज ऑफ सेल्स हैं ना, जो माउथ ऑफ वूम के जो सेल्स हैं जो कि एबनॉर्मल हो रहे हैं या उनकी शेप और उनका टेक्स्चर, वो कई दफ़ा ये होता है कि वहाँ पे आपको कुछ इरोजन हो जाती है, मतलब थोड़ी सी भी जो एबनॉर्मलिटी होगी HPV की वजह से पर्टिकुलरली जरूरी नहीं है, लेकिन आपको वैसे ही पोस्टकोइटल ब्लीडिंग अगर होती है
तो
नॉर्मल साइन है जनरली, उसको आपने मिस नहीं करना.
आपने जेनिटल वॉट्स की बात की, तो क्या वो HPV की अलामत में से एक है?
जेनिटल वॉट्स जो हैं वो HPV से होते हैं, और लेकिन वो जरूरी नहीं, उनके स्ट्रेंस भी फर्क HPV के होंगे जो कि जेनिटल वॉट्स कॉज करते हैं. तो इसलिए देखें अगर कोई गार्डासिल 9 ले रहा है वो उसको जेनिटल वॉट्स की भी प्रोटेक्शन मिल रही है, क्योंकि उसमें वो जो दो कॉमन स्ट्रेन जो जेनिटल वॉट्स कर रहे हैं वो उनसे प्रोटेक्शन है. लेकिन हम लोग HPV वायरस से इन्फेक्शन सालों रह सकती है आपको, और कोई सिम्टम्स भी नहीं होंगे आपको, और कोई किसी को पता भी नहीं चलेगा जब तक कि आप उसको टेस्ट नहीं करते.
सही. बहुत शुक्रिया. एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी. इतना एक वसी टॉपिक है कि मुझे लगता है कि इस पे हमें कुछ सीरीज करने पड़ेंगे ताकि हमारे सामईन इसको पूरी तरह से समझ सकें और वो आ गई उनको हासिल हो. लेकिन इस वक्त आपको आपसे इजाज़त लेने से पहले मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगी कि बस ये हमारे सामईन को बताती चलें कि ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से HPV ट्रांसफ़र हो. जैसे आपने कहा कि स्किन टू स्किन भी ओरल सेक्स क्या एक वजह बन सकती है HPV के ट्रांसफ़र होने की?
बिल्कुल, ये भी हो सकती है. और इसके अलावा इसलिए मैं ये जो गार्डासिल 9 है ये काफ़ी सारे और तरह के पीनाइल कैंसर को भी प्रोटेक्ट करती है.
और थ्रोट
लेकिन आप ये देखें कि HPV सिर्फ जेनिटल स्किन टू स्किन जो है मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन ओरल सेक्स जो है वो भी इसमें आती है हाई रिस्क में. इसके अलावा जो लोग मैन टू मैन सेक्स है, जो गेज हैं,
सही,
इसमें पॉपुलेशन जो है उनमें भी बल्कि ये नेशनल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है उसके तहत जो लोग क्वालिफाई करते हैं फ्री वैक्सीन, उसमें एक तो ये 12 से 13 साल के बच्चे जो स्कूल में जिनकी होती है, इसके अलावा मैन टू मैन जो सेक्स है,
मतलब आपका मतलब है जो हमारे LGBTQ के जो हमारे कम्युनिटी के जो हमारे लोग हैं, चाहे वो ख्वातीन हैं या मर्द हैं, वो सब एक्सेस कर सकते हैं इसको?
उसमें जो है ना ख्वातीन के लिए हमें फिर वही फॉलो करना पड़ेगा कि जी अब ये 19 से जो नीचे हैं और जिनको कैचअप जिन्होंने नहीं लगवाया था अगर पहले कभी और अभी भी 19 से नीचे हैं तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से कैचअप में फ्री इम्यूनाइजेशन की दो डोजेज मिल जाएंगी, लेकिन अगर वो ऊपर हैं तो उनको अपनी पॉकेट से लगवाना पड़ेगा।
सही। अब देखें ना, अब हम अगर LGBTQ की तरफ जाएं तो वो एक और अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं समझती हूँ कि मैं ज़रूर आपके पास वापस आऊँगी और आपकी जो इतने सालों की जो नॉलेज और एक्सपीरियंस है उससे हम चाहेंगे कि हमारे सामईन को भी फ़ायदा हासिल हो और हमें भी सुनकर। तो डॉक्टर ताबिंदा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आपने हमें बहुत बहुत अहम मालूम से आगाह किया।
आयशा बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। और वो आप सही कह रही हैं, ये बहुत एक्सटेंसिव और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह जब भी आपको मौका मिलेगा और मजीद सवालों के साथ आप ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।
अगर आप इसी तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो SBS रेडियो ऐप पर हमारे मुस्तकिल पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए।